राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 1993 प्रातः लगभग 8 बजे कलकत्ता में हुआ। राम
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण।
कर्मों का प्रकरण चल रहा था। उन कर्मों के करने में कई लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान करा रहे हैं हम कर रहे हैं, हम अच्छा करें मंदा करें बुरा भला जो कुछ करें भगवान की वही मर्जी है वही करा रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। ये बात सिद्धांत सबके लिए मानने की नहीं है, ये उनके लिए ही मानना है जिन्होंने अपने को सर्वथा भगवान के समर्पण कर दिया है। अपनी कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, न करने की है, न पाने की है, न जीने की है, न मरने की है, न रहने की है, न जाने की है, कोई काम अपनी इच्छा है नहीं। अपने आप सर्व भगवान को समर्पण कर दिया है, उनके द्वारा जितनी क्रियाएं होती है वो भगवान की मर्जी से होती है। जब तक अपने में कर्तृत्व अभिमान है और अपने को कुछ पाना है, कुछ जानना है, कुछ करना है, तब तक भगवान करावे जैसे ही हम करते हैं ये बात नहीं है। तो क्या है कि कर्तव्य पालन करने के लिए मनुष्य का जन्म है। मनुष्य में एक बहुत विलक्षणता है, वो है विवेक शक्ति। सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य इनको पहचानने की एक विलक्षण शक्ति भगवान ने दी है। उस शक्ति से विचार करके करना वो करना चाहिए, नहीं करना वो नहीं करना चाहिए। कर्तव्य अकर्तव्य की बात बताई गई है। अगर भगवान ही करवा लेते तो ये शास्त्र बिल्कुल निरर्थक हो जाते। ऐसा तुम करो, ऐसा तुम मत करो, ऐसा कहना भर नहीं सकता। हम स्वतंत्र थोड़े ही है, भगवान करवाते वो ही करते हैं, भगवान नहीं कराते वो नहीं करते हैं। तो विधि निषेध शास्त्र है वो बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा और गुरु निरर्थक हो जाएगा और शिक्षा निरर्थक हो जाएगी। ये सत्संग आदि करना ये समारोह सब निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य करेगा वो ही जो भगवान कराएंगे, और क्या नहीं करेंगे जो नहीं कराएंगे नहीं करेगा। फिर ऐसा करो और ऐसा मत करो ऐसा कहना बनता ही नहीं। इस वास्ते करना होता है वो कुछ न कुछ पाने के लिए करते हैं, और करना होता है वो किसी न किसी विवेक के प्रकाश में करना होता है। एक विवेक ज्ञान है, उसके विवेक के प्रकाश में करना होता है। सदगुरु पाने के लिए, तो वो पाने की बात दो तरह की होती है। एक जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, एक जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करना है। तो उत्पन्न होने वाली वस्तु है तो अप्राप्त को प्राप्त करने के विषय में है, और परमात्मा की प्राप्ति है वो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है। जो नहीं प्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिए कर्म सामग्री भगवान ने दी है, और विवेक तो सब में साथ रहेगा। पर अमुक अमुक हमें फल चाहिए, अमुक प्राप्त करना चाहिए, तो उसके लिए कर्तव्य बताया गया है, तो उसको कहते हैं कर्मकांड, करने के लिए बताया गया। और समझने के लिए है ज्ञान भाव, जो विवेक है वो विवेक सबके लिए बड़े काम की चीज है। उसमें जो परमात्मा की प्राप्ति के साधन कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, इन सब में काम आने वाला है विवेक। इनमें ही नहीं संसार का व्यवहार करने में भी कि वो काम कैसे करना चाहिए, इस बात को भी बताने वाला विवेक है। जैसे ज्ञान गुरुख से मिलता है, वो गुरु सबको भगवान ने दे रखा है, उसका नाम ही विवेक है। वो विवेक जिसमें प्रकट होता है वो गुरु हो जाता है, वो वास्तव में मार्गदर्शक बन जाता है। तो वो विवेक शक्ति भगवान ने सबको दी है, उसको जागृत करने के लिए गुरु और ग्रंथ और विचार की जरूरत होती है। गुरु से वो जागृत होता है और शास्त्रों से वो जागृति होती है, और स्वयं विचार करने से वो जागृति होती है, ठीक ज्ञान होता है। तो विवेक सब में मुख्य है। इस वास्ते भगवद गीता में जहाँ उपदेश शुरू हुआ है तो पहले ही पहल शरीर और शरीर का विवेचन किया है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोक बताए हैं, उनमें कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञातव्य अज्ञातव्य सत असत नित्य अनित्य सार असार इन बातों का विवेचन किया गया है। उसको शास्त्रकार और बहुत से कहते हैं कि आत्मा अनात्मा का विवेचन है। उन 20 श्लोकों में आत्मा अनात्मा शब्द ही नहीं है। ईश्वर है, जगत है, जीव है, माया है, प्रकृति है, ब्रह्म है, ये शब्द नहीं आए हैं। उसमें शब्द आए हैं शरीर और शरीरी। एक शरीरी शरीर में रहने वाला एक शरीर है, तो शरीर और शरीरी का विवेचन ये किया गया है, जो कि सबके लिए आवश्यक है। व्यवहार में भी आवश्यक है, स्वर्गाधिक प्राप्ति करने के लिए आवश्यक है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए भी आवश्यक है, अपना निर्वाह करने के लिए भी आवश्यक है। उस विवेक का विचन किया। ये लोग शंका करते हैं कि आत्मनात्म का विवेक बहुत योग्यता प्राप्त होने पर होना चाहिए, गीता में आरंभ ही कैसे कर दिया, तो आत्मनात्म का विवेचन नहीं किया है, शरीर शरीर का किया है। इसका तात्पर्य है कि शरीर और चीज है, आप और चीज हो, ये बात बताई गई है। शरीर है वो तो अनित्य है, परिवर्तनशील है, जो सबको मालूम है कि एक दिन बचपन था, आज वो बचपन नहीं है, क्योंकि पहले जवानी थी, आज वो जवानी नहीं है, पहले की परिस्थिति और थी, आज की परिस्थिति और है, पहले का देश और तरह का था, आज और देश है, पहले का वो संयोग और तरह का आज और है, पहले की सामग्री और है, आज और सामग्री है, समय पहले का और था, आज और तरह का है, विचार भी पहले और के तरह थे, अब और तरह के हैं। तो ये सब बदलने वाली चीजें हैं, ये विभाग परिवर्तनशील का है, और इसमें जो स्वयं का विचार है वो हरेक विचार करे तो भाई बहन जान सकते हैं कि जो मैं बचपन में था वही आज हूँ। ऐसे दोनों में एकता, अपने ज्ञान की एकता, अपने स्वरूप की नित्यता सबके अनुभव में आती है, और शरीर इंद्रियां अंतःकरण विचार देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति ये बदलते रहते हैं, ये ज्ञान स्वतः आदमी में होना चाहिए, इसको बताया भगवान ने। वो बताया क्यों है, वो बताया है इसके कल्याण के लिए। नाशवान को तुम इतना महत्व मत दो कि जिससे अपने पारमार्थिक उन्नति को ही नष्ट कर दो, अपने कल्याण में भी भूल जाओ, अपने पतन की तरफ चले जाओ, ऐसा न हो जाए। इस वास्ते भगवान ने वो ज्ञान दिया है, वो विवेक दिया है। तो तुम अपने नित्य स्वरूप को पहचानो, परमात्मा को पहचानो और सदा के लिए सुखी हो जाओ, क्योंकि संसार का जो सुख दुख है ये एक रूप रहता ही नहीं, कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, कभी अनुकूल परिस्थिति आती है कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है। तो ये तो सब बदलने वाला है, इन बदलने वाले संसार से न बदलने वाले तत्व आप पहुंचो तो सदा के लिए आनंद हो जाए, इस तत्व को बताने के लिए ये प्रकरण दिया है। तो इसमें फिर कर्तव्य अकर्तव्य दिया है, वो कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में कल जो कुछ बातें बताई थी वो बातें कुछ और भी बतानी है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्मों के फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। करने में पाप भी कर सकता है, पुण्य भी कर सकता है, न्याय युक्त काम कर सकता है, अन्याय भी कर सकता है, शास्त्रों के विरुद्ध भी चल सकता है, शास्त्रों के अनुकूल भी चल सकता है। इसमें करने में स्वतंत्रता दी गई है मनुष्य के लिए। इस वास्ते कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फलों में कभी अधिकार नहीं है, कर्म करने में तेरा अधिकार है। कर्म करने में अधिकार कितना है वो भी सीमित है, परंतु स्वतंत्रता है। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान में घूमने करने का तो हमारे को स्वतंत्रता दी है, परंतु विदेशों में जाना होगा तो यहाँ से आज्ञा माननी पड़ेगी, उस आज्ञा के अनुसार ही जाना होगा। तो हम अपने अपने क्षेत्र में करने के लिए स्वतंत्र है, इसे बाहर करने में इतने स्वतंत्र नहीं है। ऐसे मनुष्य अपने कर्तव्य क्षेत्र में करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। जो इसको स्वतंत्रता दी है तो कर्म करने की है, फल के नहीं। फल तो होगा, जो करते हैं इसका नतीजा, इसका परिणाम, वो फल होता है। वो फल नाशवान होता है, ये तो नित्य नियम है ही, क्योंकि जितने कर्म करते हैं वो आदि और अंत वाले होते हैं, तो आदि और अंत वाले का फल भी आदि और अंत वाला ही होता है। तो फल वास्तव में नाशवान होता है, तो फल की इच्छा का त्याग करके भगवान को भगवान की आज्ञा अनुसार कर्म करना चाहिए। परंतु एक विचित्र बात है, गीता में परमात्म तत्व की प्राप्ति को भी फल बताया है। जहाँ कर्मयोग और सांख्य योग के विषय में अर्जुन ने संदेह किया है पांचवें अध्याय में, उसमें ये बताया है कि सांख्य योग और कर्मयोग दोनों कल्याण करने वाले हैं। सांख्य और योग दोनों संन्यास कर्मयोग निशेष करो उभौ, दोनों कल्याण कर उन्होंने भी सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, ऐसे दोनों में विशेषता बताई कि विशेष कर्म योग श्रेष्ठ है, उत्तम है, ऊंचा है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो सुगम है, बढ़िया है। तो वो कर्मयोग करते हुए क्या करे, राग और द्वेष को छोड़कर करें, शास्त्रों जैसे बात बताई है वैसे करें। अब शास्त्रों की बात मर्यादों को नहीं मानेंगे तो फिर मन हृद करेंगे, तो मन में तो राग द्वेष होगा, तो राग द्वेष पूर्वक नहीं करना है, सांख्य और योग दोनों की पद्धति के अनुसार करना है। तो उसमें ये बताया है यद सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योग ही अभिगम्यते, दोनों जो सांख्य से प्राप्त किया जाए वो योग से भी प्राप्त किया जाता है। यह योग है, योग शब्द योगी का वाचक है, और उसमें इतना साफ कहा है कि एकम अप्यासित सम्यक उभयोर विन्दते फलम, तो ये फल नाशवान नहीं है। निश्रेष करो उभौ कहा तो निश्रेष होगा, उसका वाचक फल है या नहीं, तो फले शब्द तो निबद्धते फल में आशक्त होता है, बंध जाता है। तो यह फल उस कर्म का जो नतीजा निकलता है उसका नहीं है। मानो जो तत्व नित्य है, पैदा होने वाला नहीं, नित्य है, उसकी प्राप्ति के लिए सांख्य योग कर्म योग दोनों ही बरोबर है। क्यों एक मप्यास सम्यक और बिंदते फलम, इसका दोनों का फल क्या है? कल्याण, जो कल्याण हुआ रूप और पहले से है, नित्य तत्व है, अनित्य नहीं है। ऐसे प्रयोग वहाँ फल का प्रयोग आया है। और फले शक्तों ने फल में आसक्ति करता है, वो बंध जाता है। वो फल जो उत्पन्न होने वाला फल है स्वर्गाधिक है, यहाँ पर धनवान बन जाता है, बुद्धवान बुद्धिमान बन जाता है, उसे पद को प्राप्त हो जाता है। ये फल सबके सब नाशवान है, ये उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले फल है। तो ऐसे फल में आसक्ति वाला बंधता है। और उस जो नित्य निरंतर रहने वाला फल है उसमें आसक्ति नहीं, वो जिज्ञासा होती है, प्रेम पिपासा होती है, भगवान के प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो वो इच्छा है, वो फल है, ये नाशवान नहीं है। इस इच्छा में भी एक बात और आ गई मन में, आप लोग थोड़ा ध्यान देकर के सुने। एक हमारी कामना होती है, एक हमारी आवश्यकता होती है। ये दो भेद है इसमें। हमें जो सुख पाने की और किसे वो कामना कहलाती है, तो कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। जैसे भूख लगी तो भूख में भोजन करना है, वो भोजन की तो आवश्यकता है, परंतु इसमें अमुक स्वाद चीज है, ये अस्वाद है, ये बढ़िया है, घटिया है, ऐसा जो जीवा को लेकर स्वाद आदि को देखना, ये कामना है। पेट में भूख लगी है, हलवा पूरी से भी मिट सकती है, दाल भात से मिट सकती है, खिचड़ी कढ़ी से मिल सकती है, मिठाई से मिट सकती है, उसके लिए मांस है, मदिरा है, अंडा है, मछली है, लहसुन है, प्याज है, आदि जो निषिद्ध चीजों का भक्षण करना, ये निषेध है। इसकी इच्छा होती है, वो कामना होती है। और केवल उधर पूर्ति करना है, शास्त्र और धर्म शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र, दो शास्त्र है, उन शास्त्रों को देख करके। आयुर्वेद शास्त्र कहता है शरीर के अनुकूल है या प्रतिकूल है, परंतु उसमें धर्म शास्त्र मुख्य है, शरीर मुख्य नहीं है, क्योंकि शरीर तो मिटने वाला है। और धर्म शास्त्र तो करना है, जो धर्म साथ में चलेगा, धर्मानु को गच्छति जीव एक, एक ही जीव धर्म के अनुसार जाता है, जैसा धर्म की उस गति होती है, तो आधारित गति करने वाला धर्म है। इस वजह से अधर्म नहीं होना चाहिए, धर्म पूर्वक होना चाहिए, वेद शास्त्र वेद होना चाहिए। और स्वाद में फंस जाता है तो वो फिर धर्म शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र को मानता नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र को न मानने से कुपथ्य होता है, तो उससे रोग पैदा होते हैं। रोग भी दो तरह के होते हैं, एक पूर्व के कर्मों के कारण से रोग होता है, एक कुपथ्य जन रोग होता है। पूर्व कर्मों के कारण रोग होता है, वो रोग मिटता नहीं है औषधि आदि से, जो कुपथ्य से रोग होता है वो दवाई से मिट जाता है। तो कुपथ्य नहीं करना ये आयुर्वेद शास्त्र कहता है, और पाप नहीं करना ये धर्म शास्त्र कहता है। इन दोनों शास्त्रों को लेकर काम करना है। अब उसी पर आ जाते हैं कि जो केवल उदर पूर्ति के लिए भोजन करना है वो उदर पूर्ति कामना नहीं है, वो आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है। क्यों? अन्न से ही बना है, माता पिता ने अन्न खाया, उससे ही इसका वीर्य बना, उससे ही शरीर बना है, तो इसके लिए उसकी खुराक है, तो ये उसकी आवश्यकता है। जो उत्पन्न हुआ है उसके लिए आवश्यकता उत्पन्न वस्तु की है, वो पूरी कर देना इसका काम है। जैसे सड़क पर कोई गड्ढा पड़ गया तो वहाँ मोटर चलती है तो वहाँ लचकेगी, क्योंकि खड्डा है, उसमें गिरेगा पहिया, तो उसको भर देना चाहिए, तो वो भर देना है, वो कामना नहीं है, वो आवश्यकता है। ऐसे शरीर के लिए अन्न जल भोजन आदि की आवश्यकता है, वो शास्त्र विहित होना चाहिए ठीक तरह से, वो आवश्यकता पूरी, वो आवश्यकता है। और जो स्वाद और सुखीने के लिए काम करना है वो कामना है, उसमें पाप पैदा होते हैं। जो स्वाद चाहता है सुखिनी चाहता है वो पाप करता है और उधर पूर्ति के लिए करता है वो पाप नहीं करता, वो शास्त्र निषिद्ध आचरण नहीं करता, कहीं भूल से उस आचरण होता है तो शास्त्र की बात देखते ही समझ में बात आ जाती है, वो ठीक काम कर देता है। तो वास्तव में ये आपको दृष्टांत बताया है शरीर के लिए आवश्यकता और इच्छा। वास्तव में आवश्यकता इच्छा दो चीज और है, वो क्या है? ये संसार में जीने के लिए जो आवश्यकता है वो भी इच्छा ही है और भोग भोगने चढ़ने वो भी इच्छा ही है। आवश्यकता है इसके परमात्म तत्व की, क्योंकि जीव में दो चीजें हमें जो इतने शरीरधारी है उनमें दो चीजें, एक देह है, एक देह ही है, देह वाला है, एक चेतन है एक जड़ है, एक उत्पन्न नष्ट होने वाला है एक अविनाशी है। तो शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, इसका संयोग और वियोग होता है, परंतु जो चेतन आत्मा है उसका वियोग नहीं होता, वो नित्य रहता है। जो बालकपन है अभी तक वो का वही जीव है, शरीर वो नहीं है, शरीर बदलता है, तो बदलता है वो नाशवान है और नहीं बदलता है अविनाशी है। तो अविनाशी तत्व को प्राप्त करना है वो आवश्यकता है, जैसे शरीर के लिए अन्न जल की वस्त्र की आवश्यकता है, ऐसे स्वयं के लिए आवश्यकता परमात्म तत्व की है। तो आवश्यकता परमात्मा की है और इच्छा संसार की है, कामना सांसारिक विषय की है। वो दो तरह की होती है, एक संग्रह करने की इच्छा होती है, एक भोग भोगने की इच्छा होती है। मानो सुख भोग है, रुपया इकट्ठा कर ले, ये दो में आसक्ति होती है ज्यादा मनुष्यों की। मैं इतिहास भी ऐसा आया है, परंतु अभी नहीं कहकर इतना ही कहता हूँ कि अन्न और जल की ये आवश्यकता है इसको, तो शरीर को है। वास्तव में शरीर है वो भी तो नाशवान ही है, नाशवान के लिए आवश्यकता वो इच्छा में ही भर्ती होती है। अविनाशी की आवश्यकता है, जिसकी प्राप्ति होने पर सदा के लिए कल्याण हो जाए, कभी भी इसको दुख पाना पड़े नहीं, दुख की अत्यंत निवृत्ति और परम आनंद की सुख की अत्यंत प्राप्ति, जिससे बढ़कर कोई लाभ होता ही नहीं, ऐसे लाभ की प्राप्ति के लिए है। जो छठे अध्याय का 22वें श्लोक में कहा है, यंग लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर फिर और लाभ की इच्छा कभी होती ही नहीं, और जिसमें स्थित होने पर दुखों का संयोग का ही वियोग हो जाता है, दुख रहता ही नहीं। दो ही बात है, दुख मिटाना और महान सुख लेना। तो ये आवश्यकता परम सुख की है और सदा के लिए दुख मिटाने की है, ये आवश्यकता। और जो तात्कालिक सुख होता है, फिर भूख लग जाती है, फिर जरूरत हो जाती है, फिर जरूरत हो फिर लिया, फिर ये नाशवान है, ये आवश्यकता शरीर की है। स्वयं की आवश्यकता परमात्मा की है, और संसार की कामना है वो कामना संग्रह की और सुख भोगनी है। जब सुख भोग की और संग्रह करने की इच्छा होती है वो परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं हो सकता, वो अपनी आवश्यकता को समझ ही नहीं सकता, क्या आवश्यकता है इस तरह बुद्धि जाती ही नहीं। इस वास्ते भगवान ने दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कहा कि भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रतिशत व्यवसाय आत्मा की बुद्धि समाधो न विधीयते। दूसरा अध्याय 41 से 44 तक 4 श्लोकों में भगवान ने निश्चयात्मक बुद्धि बताई है, व्यवसाय आत्मा का बुद्धि एका, निश्चय की बुद्धि एक होती है। खूब ध्यान देकर भाई बहन सुने, अपने कल्याण करना है, हमें अपना उद्धार करना है, अपने परम तत्व की प्राप्ति करना है, हमें भगवान का दर्शन करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, अपना उद्धार करना है, सदा के लिए कल्याण करना है, ये आवश्यकता है, ये इच्छा है। एक तो ये इच्छा वास्तव में है, तो निश्चय करने वाली बुद्धि हो जाएगी पहले कि मैं तो कल्याण ही करना है। ये बुद्धि कब होगी? जब भोग और ऐश्वर्य की इच्छा प्रबल नहीं होगी। रुपया संग्रह करें और सुख भोगें, ये दो इच्छा और से दोनों में किसी एक की इच्छा हो जाए वो परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं हो सकता, सदा के लिए कल्याण नहीं कर सकता, वो विनाशी सुख में ही फंसा रहता है। भोग ईश्वरी व्यवसाय 41 से 44 तक चार श्लोकों में आप गीता को देखें तो भोग और सेवा में जो प्रसक्त है, भोग भोगने में रुपया रुपया इकट्ठा करने में आसक्त है, वो उस तत्व को नहीं समझ सकता। परमात्मा की प्राप्ति करेंगे ऐसी इच्छा उनकी भी होती है, सत्संग में सुनते हैं, सत्शास्त्रों को पढ़ते हैं और स्वयं सोचते हैं, विचार करते हैं, जो तीन बात मैंने पहले ही बताई है। इन बातों से विचार आता है कि हमें अपना कल्याण करना है, अपना मुक्ति करना है, तो सत्संग के समय तो ऐसी इच्छा हो जाती है कि अपना कल्याण करना है, परंतु वो टिकती नहीं, क्योंकि संग्रह की सुख भोग की इच्छा होती है, तो सांसारिक सुख भोग की इच्छा से हम संसार में फंसे रहते हैं। इसमें केवल लोलुपता रहती है, हाथ कुछ नहीं लगता। भोग भोगने के बाद में कहे हमने भोग भोग लिए, वास्तव में भोग नहीं भोग सकते आप, भोगों ने आपको भोग लिया। भोगान भोगता वह नहीं उपभोगता, हम भोगों को नहीं भोग सके, भोगों ने हमारे को भोग लिया। दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस यह है एक दिन हम न होंगे। आपने कितने ही भोग भोगे तो राजी आप हो जाते हो, पर भोग तो नए नए पैदा होते हैं, आजकल तो और आविष्कार हो रहा है, और शरीर नष्ट हो जाता है, तो आपने भोगों को नहीं भोगा किंतु भोगों ने आपको भोग लिया, अर्थात भोगों को आपने खाया नहीं, आपको भोग खा गए, मर गए, बूढ़े हो गए, मर गए, कमजोर हो गए, मर गए। तो ये भोग आपको शांति देने वाला नहीं है, इस वास्ते इस भोग की और इस संग्रह की इच्छा छूट जाए। मैं खाने पीने की, रहने की, रुपया पास में रखने की बात निषेध नहीं करता हूँ, कि रुपया आपको पास में नहीं रखना चाहिए, अथवा कपड़े नहीं लेना चाहिए, अथवा भोजन नहीं लेना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, ये नहीं कहता हूँ। आप जो उद्देश्य मानते हैं कि रुपया लेकर फिर भोग भोगेंगे, आनंद करेंगे, ये बात गलत है, क्योंकि आप भोग सकोगे नहीं। प्राय आदमी करते हैं कि हम अपने खुशी से रहें, अपने खर्चा ठीक तरह से करें और अच्छी तरह से रोटी खाएं, कपड़ा पहने, आराम से रहें, संग्रह करें, तो आराम तो मिलने वाला मिलेगा, पर आराम भोगना केवल मनुष्य का काम नहीं है। विषय भोग भोग है, सुख भोग है, यही तनु कर फल विषय न भाई, मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है, ये तो पशु पक्षियों को है, वो पशु भी भोगते हैं, वैसे ही पशु भी मरते हैं, जन्मते हैं, पशुओं के भी बच्चे हो जाते हैं, वे भी आराम रहते हैं, कभी दुख पाते हैं, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता आती है, ऐसे भोगों की इच्छा वालों को भगवान मनुष्य जन्म फिर नहीं देते, फिर कहते हैं भोगों की इच्छा वालों को 84 लाख जोड़ी में भेजो, जो सुख और दुख भोगते ही रहे सदा के लिए करवा जन्मांतरों तक, तो वो नित्य नहीं होता, वो तो भोग भोग खत्म हो गया। नित्य सुख प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए जो सदा सुखी हो जाए, दुख कभी आवे ही नहीं नजीक। 23वें श्लोक में यह कहा कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का ही वियोग है, दुख के स्पर्श का भी वियोग है, हो ही नहीं तब तक दुख, ऐसा अत्यंत आनंद है, उसकी प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है और उस तरफ ले जाने के लिए ये आयोजन है। तो कल कर्मों की बात मैं कह रहा था, तो जितने कैद में पड़े हुए कैदी है, उन्होंने काम किया तो है स्वतंत्रता से, अब भोगते हैं स्वतंत्रता से, हत्या करी, व्यभिचार किया, डाका डाला, चोरी करी, जेब कतरी, दूसरों को दुख दिया, तो उस देने में उस करने में तो आप स्वतंत्र रहे, पर उसका फल भोगने से कैद में आप स्वतंत्र नहीं हो, कैद में रहे न रहे ये आपकी बात नहीं है, भोग भोगना पड़ेगा, ऐसे पाप कर्म करते हैं तो नरकों में जाना पड़ेगा, उसके लिए आप स्वतंत्र नहीं है, फिर प्रसन्न हो जाएंगे, करने में स्वतंत्र, भोगने में स्वतंत्र है, इस वास्ते कर्मणि ने अधिकार से माँ फल से फल में कोई अधिकार नहीं है, कौन सा फल जो नाशवान है और अविनाशी है उसके लिए प्राप्त भाव स्वतंत्र है। तो कर्मों के करने में हम जो लगते हैं वो क्रियमाण कर्म होता है, और कर्म करने के बाद में शुभ अशुभ कर्मों का जो फल संग्रह होता है उसको संचित कर्म कहते हैं, और उन कर्मों में से जो फल भोगने के लिए कर्म उद्यत हो गए हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म में तीन पैदा होती, तीन चीज, एक जन्म होगा, एक आयु होगी, एक सुख दुख होगा। तीन चीजें गर्भ में आती बालक के स्वतः हो जाती है। और वैसे ही इतना इतनी उम्र होगी और ऐसा सुख दुख का अगर परिस्थिति आवेगी और भोग होगा आयु जात्यायुर होगा, तस्य विपाको जात्यायुर होगा, कर्मों का विपाक फल का जन्म आयुर हो। उसमें आयु में भी एक विचारने की बात है, बीच में याद आ गई, आयु है वो निश्चित है, ये बात भी ठीक है। आयु घट बढ़ भी सकती है, ये बात भी ठीक है। निश्चित क्या है कि श्वासों का आना जाना जैसे घड़ी का खटका होता है, ये तो उतना ही है, पर अच्छा काम करेगा, शांति से रहेगा तो उसकी उम्र बड़ी होगी। वो श्वास धीरे धीरे चलेगा तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी वर्षों में। और पाप करेगा, अन्याय करेगा, हत्या करेगा, व्यभिचार करेगा, दूसरों को दुख देगा तो हृदय में हलचल पैदा होगी, तो धौंकनी तेज हो जाएगी, उसमें बहुत जल्दी भर जाएगा, उतना वर्ष नहीं होगा, श्वास तो उतने आ जाएंगे, उतने आने जितने ही आ जाएंगे, परंतु जल्दी मर जाएगा। तो ये घट बढ़ सकता है, शांति से अथवा प्राणायाम आदि करके मनुष्य अपना जीवन बढ़ा सकता है। योगी बहुत वर्षों जी सकते हैं, क्योंकि श्वास को रोक करके श्वास को रखते हैं तो श्वास पूंजी बनी रहती है, जल्दी खर्च नहीं होती, तो कई वर्षों तक वो जी सकता है। तो ये तीन चीज उनसे पैदा होती है। अब भोग जो अगाड़ी आएगा वो संयोग होना जैसे होगा, उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, वो तो अपने आप होगा। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। हमारे लिए यहाँ सुख दुख आदि की व्यवस्था पहले से हो गई है, जिस तरह से यहाँ हम सत्संग करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, ऐसा विचार हुआ तो यहाँ बैठने की और यहाँ छाया की और बोलने की और लाउड स्पीकर आदि सामग्री की आवश्यकता पहले होती है, फिर हम सत्संग करते हैं। इस तरह से जन्म लेकर हम कैसे करेंगे, हमारे लिए व्यवस्था पहले होती है, पीछे हम जन्म लेते हैं। जैसे माँ के थनों में दूध पैदा होता है तो बालक से पहले दूध पैदा हो जाता है, बालक पीछे पैदा होता है, ऐसे आपके व्यवस्था का प्रबंध पहले हुआ है, पीछे आपका जन्म हुआ है। तो माताओं के दूध पहले पैदा हो जाता है, बालक पीछे पैदा होता है, जिसमें जन्म होता है जब चतुर माताएं हैं वे इन बातों को जानती है, इस वास्ते पहला दूध बच्चे को नहीं पिलाती, पहले वो खील निकाल लेती है, निकाल करके वो, क्योंकि पुराना दूध हो जाता है वो जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है, अगर वो बच्चा पिए तो नवजात छोटा सा चूहे के समान बच्चा होता है, वो पचा नहीं सकता, इस वास्ते उस दूध को निकाल देते हैं, पहले निकाल करके शुद्ध दूध पीछे ताजा होता है वो पिलाते हैं। तो इससे सिद्ध क्या हो गया, वो जो ठस गया है दूध गाढ़ा हो गया है, तो पहले दूध पैदा हुआ है तब ना वो बड़ा है, ऐसा तो दूध पहले बनता है बच्चा पीछे आता है। ऐसे हमारे लिए अन्न आदि पहले बनते हैं, हमारा जन्म पीछे होता है। लोग कहते हैं ज्यादा हो जाए तो अन्न कहाँ से मिलेगा, अरे अन्न पहला पैदा होता है भाई, वो तो पल पैदा पहले होगा, शरीरों के पैदा होने से पहले वो प्रबंध भगवान के यहाँ किया हुआ है। ये बहुत ही बड़ी मूर्खता है कि ज्यादा जनता हो गई तो अन्न कहाँ से मिलेगा, अरे अन्न मिलने के लिए खेती करने की जरूरत है, खेती की जमीन खाली बिना खेत के बहुत जमीन पड़ी है, ज्यादा आदमी होंगे तो ज्यादा खेती करेंगे तो अनाज ज्यादा पैदा होगा, या दो ही बालक होंगे तो खेती कौन करेगा, जो खेती नहीं होना अनाज कहाँ से होगा, तो मरोगे भूखा मर करके। विचार तो करते हैं कि थोड़े आदमियों से ठीक रहेगा, हम कहते हैं देखना तमाशा, अभी दिखता नहीं है, परिणाम होगा तब देखना, क्योंकि कौन तो घर में काम करेगा, कौन फौज में जाएगा, कौन खेती करेगा, कौन दुकान करेगा, दो ही लड़के हुए घर में ही रहेंगे, और वे भी मर गए तो पाएंगे। मेरे पास शिकायत आई है, कई घरों में दो दो बच्चे थे, वे तो मर गए, अब माँ बाप की सेवा कौन करे, बड़ा दुख पा रहे हैं, ऐसी शिकायत मेरे पास आई है। मैंने कहा तुम नाम लिख लाओ, तो वो नाम लिखने को गए, मैंने पहले पूछा है नाम, ऐसे परिवार हो गए हैं, बच्चे मर गए दुख पा रहे हैं, कौन सेवा कौन करे, जो बालक थे दो, दक्षिण में हम गए तो वहाँ एक माई मिली कि महाराज हमारे दो ही बालक थे, फिर हमने ऑपरेशन करा लिया, एक बालक को पागल कुत्ता खा गया वो मर गया, अब आशीर्वाद दो ये जीता रहे। अरे तुम्हारे घर में खान उसको नष्ट करते हो और जीता रहे मानते हो, क्या करें लोग, क्या अकल है भगवान जाने। तो पहले अपने प्रारब्ध रचा है तो वो जितना आपको मिलना है उतना मिलेगा, आप न्याय युक्त काम करो तो मिलेगा, अन्याय करो तो भी मिलेगा, निर्वाह की कमी नहीं होगी। ज्यादा धन इकट्ठा करना चाहते हैं वे पाप करते हैं, जो निर्वाह का काम करते हैं वे धनी भी हो जाते हैं गरीब भी हो जाते हैं, उनमें दोनों चीजें आती। प्राप्त अगर संदा है तो आपके धन पैदा ज्यादा हो जाएगा, परंतु उसमें निगाह ये रखनी है कि आपका धन कितना है। भागवत में एक प्रसंग आता है, नाथ जी महाराज आए हैं पांडवों के पास, तो युधिष्ठिर महाराज वो कहने लगे हैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र और ब्रह्मचारी ग्रस्त और बाणप्रस्थ और सन्यास इनके धर्म बताए हैं, स्त्रियों को धर्म बताए हैं, और सन्यास की बड़ी महिमा गाई है कि जो त्याग कर देते हैं बड़े ऊंचे होते हैं। तो उसमें युधिष्ठिर ने ये जिज्ञासा हुई कि महाराज गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य सन्यासी की तरह ऊंचे पद को प्राप्त हो सकता है क्या। तो उसका उत्तर दिया, बड़ी सुंदर बात कही है, उसका उत्तर दिया कि यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्वंग हिदेही नाम अधिकंग यो भी मन्येत सस्तेनो दंडवर्णति। यावत ब्रियेत जठरम, जिससे पेट भराई हो जाए, मानो खाने पीने के लिए हो जाए और रहने के लिए कपड़ा ओढ़ना मकान इतना निर्वाह मात्र इतना तो है उसका, और अधिक जो भी मान्य थे अधिक धन को जो अपना मानता है वो चोर है, ऐसा शब्द लिखा, मैं नहीं कहता हूँ, गीत भागवत में लिखा है सस्तेनो, और चोर बताया इतना ही नहीं है, उसे डंडा पड़ना चाहिए, आज्ञा देनी है उसे डंडा पड़ना ही चाहिए, कैसा जो चोरों को पड़े वो पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा तो उतना ही है जितना खा पी सकते हो, जितने में रह सकते हो ओढ़ सकते हो, जिससे तुम्हारा निर्वाह हो जाए उतनी चीज तो आपकी है, दूसरी चीज है आपके पास, तो आपके पास तो आई, हमारे पास अधिक है, तो जो कोई भूखा मिले तो उसको भी अन्न दे दो, नंगा मिले तो कपड़ा दे दो, रोग हो गया है तो उसको औषध दे दो, निर्वाह उसका भी कर दो। वो कहते हमारा वो सब दे दो, सब कैसे दे दें, सब हमारा है ही नहीं, ऐसे हमारे निर्वाह के लिए जितनी चीज है उसकी अधिक है, निर्वाह के लिए आप भी ले लो। तो निर्वाह की सबको दे देना, प्रबंध करना, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमें उसे प्रवाह की चीज करनी चाहिए। तो कर्मों का फल कर्म क्या है, कर्तव्य कर्म करते हुए दूसरों की सेवा करें। दो बात और है बीच में, एक तो भगवान का भजन करना, परमात्मा तत्व का भजन करना, और एक दूसरी सेवा करना, ये दो मनुष्य का खास धर्म है, मनुष्य मात्र का ये धर्म है कि दूसरों को सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, सेवा करे और परमात्मा को याद करे। यहाँ तो जो चीजें मिली है वो अपने भोगने के लिए नहीं मिली है, किंतु दूसरों की सेवा करने के लिए मिली है। जो यहाँ बालक है, यहाँ बूढ़े हैं, केवल भजन ध्यान में लग गए हैं, ऐसे आदमियों का निर्वाह करने के लिए आपका संग्रह है वो देना चाहिए। बच्चों के पालन करने में, बच्चों की पढ़ाई में, जिन मामूली घरों में बालक होते हैं उनकी पढ़ाई का प्रबंध नहीं है, तो आपके खाने पीने से अधिक धन है, उस धन से बालक पढ़ाई कर ले उसके लिए खर्च करना चाहिए। रोगी है और संन्यासी त्यागी परमात्म तत्व को इसके लिए प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा केवल संसार की सेवा ही करते हैं, उनके लिए वो धन है जो आपके पास संग्रह आपके खाने पीने से अधिक मिला है वो उनके लिए है। जैसे गांधी जी थे, तो गांधी जी दूसरों का हित करने की सोचते थे, तो उनको उनके निर्वाह के लिए उनको कमाना नहीं पड़ा, क्यों, कमाने को समय नहीं उनके पास में। ऐसे भजन ध्यान करने वालों को भी कमाने के लिए समय नहीं, वे भजन ध्यान करे अथवा संसार की सेवा करे, तो उसके अन्न जल का प्रबंध, औषध का प्रबंध, रहने सहने का प्रबंध जिनके पास अपने निर्वाह से अधिक है उनको उनके करने की जिम्मेवारी है। तो उन बालकों की, बूढ़ों की, रोगियों की और पारमार्थिक पथ में लगे उनकी और सेवकों की सेवा करना है, उस सेवा के लिए आपके पास अधिक धन है, तो वो उनके लिए है। और वो अपना समझता है तो वो चोर है, ना तो आप खर्च कर सकता ना औरों को खाने के लिए, औरों को देता ही नहीं, तो उसे डंडा पड़ना चाहिए, ऐसा लिखा नारद जी महाराज ने कहा है। तो भाई अपने पास जो काम है सब सेवा करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, हित करने के लिए है, तो कर्तव्य कर्म के द्वारा आप सेवा करो। सेवा में दो चीजें, एक तो शरीर से खट करके सेवा करना, और एक अपने पास में वस्तु है, धन है, अन्न है, वस्त्र है, जल है, मकान है, निर्वाह की वस्तु है, उसके द्वारा, वस्तुओं के द्वारा सेवा करना, और एक खट के परिश्रम सेवा करना। जैसे यहाँ पर प्रबंध करने वाले भाई है, वो प्रबंध करते हैं, मकान बनाने वाले वो पंडाल बनाते हैं, बैठाने करने का प्रबंध, उन खाने पीने का प्रबंध, फलादि का प्रबंध, जो उनके निर्वाह की वो प्रबंध करते हैं, तो वो प्रबंध करने के लिए वे हैं, वो अपने लिए नहीं है, वे प्रबंध करता है, वे भी इन सत्संग में सुनने वालों से ज्यादा लाभ उठाएंगे। क्योंकि आपको समझ लो कि 16-16 आना, आपको 100 पैसा मिलेगा पूरा, तो उनको एक एक पैसा दिया जाए तो 1000 पैसे उनके पास हो जाएंगे। सेवा करने वाले सबका प्रबंध करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं, तो रीते थोड़े ही रहेंगे वे, आपका तो कम होगा, क्योंकि आप सेवा लेते हो, बिछौना पे आपने बिछाया हुआ समझा, ऊपर पंडाल बना हुआ आपने पियाया पाया, आपके बत्ती भी लगी हुई, प्रकाश भी आपने पाया, सुनने के लिए लाउड स्पीकर लगा दिया जिसे आप सुन सके, ऐसी सुविधा जिन्होंने की, क्या वो मुफ्त में की है? क्या उनको फल नहीं मिलेगा? इस आयोजन में उनको फल मिलेगा, तो वो फल जो सेवा करने वाले हैं सच्चे हृदय से, उसको कोई पैसा लेते नहीं, कोई आपसे वाह वाह लेते नहीं, कोई चीज नहीं लेते, केवल सेवा करते हैं, तो उनको फला एक एक पैसा मिलेगा, आधा आधा पैसा मिलेगा, तो भी आपसे ज्यादा लाभदायक वो होंगे, क्योंकि आपकी सुविधा की है, जिसे सुन सकते हो, सुना सकते हो, ठीक शांति से बैठ सकते हो, नहीं तो कई तरह के विघ्न आवे, कैसे हम सत्संग करेंगे? तो उनको लाभ होगा। तो हमारे पास चीज है वो दुनिया के हित करने के लिए है, और आपका जो मन है वो भगवान के लिए है, अपने आप हो वो भगवान के लिए है, तो भगवान में आप लोगो, मैं भगवान का हूँ, ऐसा अपने आप को बदलना है। आज सुबह भी प्रसंग चला था कि अपने आप को भगवान में लगाना है, ये बात एक बड़ी मार्मिक है, समझने की है। किसी ने पूछा कि मन लगा मैं भगवान में, तो मन, मैंने कहा मन आप नहीं लगा सकते, जब तक भोगों की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, तब तक भगवान में मन नहीं लगेगा। सत्य हृदय से भगवान का मन भगवान में नहीं लगेगा, कारण कि मन आदि प्रकृति का कार्य है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, शरीर है, ये प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति के कार्य में मन जाएगा। आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं, आप स्वयं परमात्मा को लग सकते हो, और स्वयं लगे जाओ तो मन भी लगेगा, बुद्धि भी लगेगी, इंद्रिय भी लगेगी, शरीर भी लगेगा, उसमें लग जाएगा। आप खुद लगो तो, खुद लगना कैसे होता है? उस आज सुबह तो मैंने कहा आप मन से ही करते हो, तो ब्याह क्या मन का करते हो, अपना करते हो? ब्याह मेरा हुआ कि मन का ब्याह हुआ? किसी के गोद जाते हो तो मन गोद गया, आप गोद गए? आप साधु बनते हो तो आपका मन साधु बना, आप साधु बने? आप स्वयं बनते हो, वो स्वयं भगवान में लगो तो मन लगेगा जरूर ही। और भाई मन तो आपका है, मन के आप नहीं हो, ऐसे धन के आप नहीं हो, धन आपका है, तो मन आप भगवान में लगाओ। कब? कि जब आप लग जाओगे तो मन स्वतः लगेगा, स्वयं आप मालिक हो। मन है, इंद्रियां, ये कारण है, ये कर्ण का काम संसार में होगा, और परमात्मा में वह कर्ण नहीं चलता, कर्ण निरपेक्ष तत्व है, वो तो कर्ण रहित तत्व है, प्रकृति के कार्य से अतीत तत्व है, उसमें प्रकृति का कार्य, अंतःकरण और क्रियाएं नहीं जाती, इंद्रिया नहीं जाती, मन बुद्धि मन नहीं पहुंचते। यदि मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मतम बुद्धि नेदम यदि उपासते, मन बुद्धि आदि वो पहुंचते नहीं है, ये संसार में काम करते हैं। जिससे मन मनन करता है, जिससे बुद्धि निश्चय करती है, जिसकी शक्ति लाकर आप काम करते हो, वो शक्ति वाला जो परमात्मा है, वो इन क्रियाओं के द्वारा नहीं मिलता है। पर उद्देश्य आपका परमात्मा का हो तो क्रिया भी भगवान की प्राप्ति में सहायक हो जाएगी, द्रव्य भी सहायक हो जाएगा, शरीर भी सहायक हो जाएगी, इंद्रियां भी सहायक हो जाएगी, मन बुद्धि ये सब सहायक हो जाएगी, जब आप स्वयं परमात्मा तत्व प्राप्त हो गए और भोग ऐश्वर्य चाहोगे तो वहां नहीं पहुंचोगे। इस बात से ऊंचे उठ करके आप स्वयं अपना निश्चय करो, मैं तो परमात्मा की प्राप्ति हमें करना है, सुख पावे दुख पावे, आदर हो निरादर हो, निंदा हो स्तुति हो, आराम से रहे चाहे कष्ट पावे। भर्तृहरि ने कहा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्ट गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्ततः प्रवचरन्ति पदेन धीरा। बड़े नीति निपुण निंदा करे तो परामत करो, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु और स्तुति करे बड़ी प्रशंसा करे तो दोनों से आवू पे रहो, न निंदा में फंसो न प्रशंसा में फंसो। और लक्ष्मी आ जाए चाहे चली जाए उसमें भी मत फंसो, लक्ष्मी आ जाए तो ठीक है चली जाए तो भी ठीक है उसमें भी ना फंसो। और बीमारी आ जाए चाहे स्वस्थ हो जाए, चाहे जीते रहे चाहे मर जाए तो इनमें भी मत फंसो। तो क्या करो कि न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा, जो पंडित होते हैं न्याय रास्ता है जो ठीक कर्तव्य का मार्ग है उस पर चलो, निंदा स्तुति आदि से मत डरो, अनुकूल से प्रतिकूल से मत फंसो, लाभ और हानि में मत फंसो, इनमें न फंस कर हमें तो परमात्मत्व को प्राप्त करना है। जैसे बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते में आने वाले आराम और दुख में नहीं फंसते, बद्रीनाथ जाते हैं बड़ी बदलों की छाया हो गई है, बड़ा सुंदर वन फूला हुआ है, उसकी सुगंधी आ रही है, रास्ता बड़ा शांति का है, तो उसमें भी वहां भूलो मत बैठो मत। और महाराज आगाड़ी चले तो तटी पेशाब आदि की दुर्गंध आ रही है और ऊपर से घाम तप रहा है और चढ़ाई आगे रास्ता कठिन है, तो ऐसे दुख पाकर वहां भी घबराओ मत। इस तरह से यात्रा हमें तो बद्रीनाथ जाना है, यहाँ का सुख दुख नहीं भोगना है, इसी तरह से परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए चलना है तो यहाँ सुख दुख में अटकना नहीं है। न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति, न्याय जो रास्ता है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा भजन स्मरण है, वो ठीक तरह से करते रहे, सुख दुख की परवाह नहीं करें, तभी वो भजन होगा परमात्मा प्राप्ति होगा। नहीं तो भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम भोगों में और ऐश्वर्य में आश्रित होते हो तो ये निश्चय नहीं होगा कि परमात्मा प्राप्ति करना है। देव सहायता बुद्धि समाधु न भी थे परमात्मा प्रसय निश्चय करने वाली बुद्धि आपके पैदा ही नहीं होगी, ये नहीं तब होगी जब इनसे ऊंचे उठ जाओगे। इस सुख से दुख से आदर से निरादर से निंदा और प्रशंसा से धन से और धनवत्ता से निर्धनता से आराम से और दुख से ऊंचे उठ जाओगे तब परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। ये द्वंद्व है, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गति मूढ़ा परमद्यंतत। पांचवा अध्याय में जहां निर्णय की बात करे, निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात्म थे न प्रियम प्राप्य नो द्वेज प्राप्य अप्रियम, प्रिय और अप्रिय में फंसे नहीं, दुख में तो घबरावे नहीं, सुख में तो फूले नहीं, दुख में भूले नहीं, तब ये रास्ता होगा सीख परमात्मा तत्व की तरफ। ये तो संसार का स्वरूप है, संसार में सुख और दुख दोनों होते ही हैं। कोई भी प्राणी ऐसा आपको नहीं मिलेगा, इतिहास में कोई नहीं मिलेगा कि जिसके जीवन में सुख ही सुख रहा हो और सिर्फ जीवन है दुख ही दुख रहा हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा। संसार का स्वरूप है सुख और दुख, ये तो आवेगा अनुकूलता प्रतिकूल आवेगी। अवतार भगवान ने आन लिया तो भगवान के सामने भी आई, अवतार लेकर आएगा तो यहाँ कायदा तो रहे भाई, सुख और दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आवेगी तो सबको आई है। कोई इतिहास में आदमी नहीं मिल सकता बिना तो आप खोज करके बता देना, फिर हम सोचेंगे कि वो सुखी सुखी रहा और वो दुखी दुखी रहा, ऐसा नहीं है। सुख और दुख अनुकूलता प्रतिकूलता हानि और लाभ जय और पराजय ये सबको आता है, ये तो आता है संसार स्वरूप है। तो इसमें फंस जाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं करेंगे। सुख दुख है सभी कृतवा लाभा लाभ हो जया जय जय पराजय हानि लाभ और सुख दुख को समान समझ करके परमात्मा तत्व को प्राप्त करेंगे तो उसकी प्राप्ति होगी। तो मनुष्य शरीर है ये सुख दुख भोग के लिए नहीं है, इसको कर्मयोनि कहते हैं। तो ये साधारण चलते उनके लिए कर्मयोनि है, वास्तव में ये साधनी होनी है परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए, साधनी होनी है मनुष्य जन्म। तो उस जन्म में आकर उस तत्व को प्राप्त करना है, यहाँ उलझना नहीं है, सुख दुख में घबराना राजी होना नहीं है, हम तो इसे ऊंचा उठना है। तो ऐसी निश्चय बुद्धि भोग और ऐश्वर्य माशुते उनकी नहीं होती, निश्चय कर ही नहीं सकते। सुख पाकर सुख हर्ष ही जड़ दुख में लिखाई, जड़ होते हैं सुख में हर्षित हो जाते हैं दुख में घबरा जाते हैं, मन दोस्त सब धीर धरे मनमानी, पंडित होते हैं धीर होते हैं और दोनों को समान समझ के चलते हैं, तो दोनों को समान समझो, ऐसे 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 नहीं क्षम समान, तो समान समझते ही परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तेरी जित सर्गो ये साम्य स्थित, माना जिन पुरुषों का मन साम्यावस्था में स्थित हुआ है उन पुरुषों ने यहाँ जीते जी संसार पर विजय कर ली, और सुखी दुखी होता है उस पर संसार विजयी हो गया, आप हार गए। आप अनुकूलता प्रतिकूलता मिलने पर गद्दीर विमुखता सुख दुख सज्ञ सम दुख सुख स्वस्थ सबलोष सुख दुख में सवार धैर्य पूर्ण रहते रहे। अपने तो इन्हें फसला दे, ये तो आने जाने वाला है, सुख आने वाला है दुख आने वाला है, दोनों आने जाने वाले हैं। दुख आता अच्छा लगता है, दुख जाता हुआ अच्छा लगता है, सुख जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, तो सुख दुख दोनों बरोबर ही है, एक तरफ सुख एक तरफ दुख, एक तरफ दुख एक तरफ सुख, ऐसा है। तो इनमें समान रह करके परमात्मा तत्व को प्राप्त करो, वो मनुष्य जन्म का आपका साफल्य हो जाएगा, इस वास्ते आपने चलना है। तो कर्मों की बात है, जो कसूर कर्म है वो करो, हमारा हित हो दूसरों का हित हो अभी हित हो और परिणाम में हित हो सबका कल्याण हो वो काम करो, अपना भी अहित ना हो दूसरों का भी अहित ना हो, स्वार्थ में आकर दूसरों का नुकसान कर देना, अपने धन इकट्ठा भोग भोगने में लगना और उनको दुख की परवाह न करना, ये असली दुख का निमंत्रण है, अगर महान दुख भोगना पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करो। ये थोड़ी बातें कल कही थी, थोड़ी आज कही है, अब समय हो गया है। नारायण नारायण नारायण।